इसलिए इस ब्रज में, वो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, इस ब्रज में कृष्ण का ऐसा मधुर आस्वादित होता है और कृष्ण में ऐसे मधुर भाव रस की सामग्री होती है, रूप लावण्य वेश सब ऐसा हो जाता है। ब्रज के बाहर में कृष्ण का भी ऐसा रूप नहीं होगा और आस्वादन करने वाला भी ब्रज से बाहर में ऐसा नहीं होगा। यदि किसी ने स्फूर्ति से की या कुछ दूसरे रूप से की, अनुभूति साक्षात जैसे होती है वो नहीं होगी। जादोहने वहनने मथनो पलेप प्रेखं खनार्भरुदितो खन मार्जनादो गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रुकंठ धन्या प्रजा स्त्रिया उरु क्रमचित्त जाना। जातोहने वहनने मथनो पलेप, ये कौन कह रहा, वही कह रहे हैं। अब उन यहीं से देख रही है, उन्होंने श्रवण किया है कृष्ण लीला चरित्र को, किनसे श्रवण किया है, कोई रसिक, वो फल विक्रयणी या कोई भी हो, परस्पर परस्पर तो हो ही जाता है, या वो मिल गई हो ब्राह्मणों की पत्नियां, जजमानी में वो आ गई हो और इनसे मिली हूँ जजमानों के घर में आ, और कृष्ण के उस रूप लावण्य का यदि वर्णन किया हो और गोपियों की दशा का वर्णन किया, तो वो कह रहे हैं जादोहने वहनने मथनो पले। एक मथुरा की नागरी उसी सभा में, कंस की सभा में, अभी चारण मुष्टिक कृष्ण को और बलदेव को खींच रहा है युद्ध करने के लिए, कृष्ण बलराम का भरोस भरा चेहरा देख रहे हैं, और उस समय वो पहला श्लोक बोला, ये दूसरा श्लोक, दुर्भागा है हम, गोपियां जैसा भाव हमें नहीं मिला, हृदय नहीं मिला, कैसे फिर उसी का स्मरण कर रही है, माने देख रही है साक्षात। जा दोहने महनने, मथुरा की नगरियां एक दूसरी को देख करके कर संबोधित कर सकी, देखो सुनो, यदि ये विदग्ध शिरोमणि, ये विदग्ध शिरोमणि है, अभी तो इनको वीर रस में देख रही हो, किंतु विदग्ध शिरोमणि के रूप में नहीं देख रहे हैं, किंतु वैसे हम लोगों ने इनका विदग्ध शिरोमणि का रूप नहीं देखा, अभी हम क्या देख रहे हैं, लावण्य सार है ठीक है, किंतु असमर्थ रूप में बढ़ा हुआ और गोपियों के द्वारा परिलक्षित देखा हुआ ये रूप नहीं है, ये बड़े विदग्ध है। विदग्ध किसको कहते हैं, रसिक चतुर, सोलुंठ हो, धीर ललित नायक हो, इसके बिना ये सब चीज नहीं होगा। यदि कुछ उज्जवल नीलमणि की कृपा हो जाए, कुछ कुछ कृपा हो जाए, तो इसको समझा कुछ जा सकता है, अन्यथा उज्जवल नीलमणि की कृपा कैसे होगी, यदि रूप गोस्वामी की कृपा हो जाए, रघुनाथ दास की कृपा हो जाए, उनकी कृपा कैसे होगी, उनके जो अनन्य यदि कोई फलवश हैं, अनुगत में भजन करने वाले रूप गोस्वामी के, रूपानुग वैष्णव यदि कोई हो, तो कुछ कुछ हम लोग आभास के रूप में समझ सकते। वो कह रहे हैं लीला कौतुक वैचित्र से ब्रज सुंदरों, ब्रज सुंदरियों के, यदि दर्शन का अभाव भी कृष्ण को वो दर्शन नहीं कर पाती हैं, उस समय भी कृष्ण का वो साक्षात करती रहती भाव नेत्र से, कैसे उसी को बतला रहे हैं, देखो यहां पर जातो होने वहन, कृष्ण गोचारण करने के लिए चले गए, या मथुरापुरी में माने कि लंबे प्रवास में, ये जो विरह होता है बहुत प्रकार का, संक्षिप्त प्रवास, सुदूर प्रवास, मान, कितने प्रकार के हैं ये सब, मान वाला जो होता है बड़ा उत्कर्षदायक होता है, पास बैठे हैं दोनों और दोनों मुख मोड़ लिए हैं, भीतर में इच्छा होती थोड़ी सी ललिता जी कह देना तो मान तोड़ लो, उनसे बातचीत करो, और वो कहती हैं जैसे कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़ा सा थोड़ी सी इंगित यदि ललिता दे दे तो मैं इनसे बोल लेता। दोनों नहीं बोल रहे, उसमें बतलाओ कैसी स्थिति होगी। ये बड़ा भारी औसत प्रवास में है, असमर्थ है, नहीं बातचीत कर रहे हैं, वो दूसरी बात। दोनों की इच्छा बोलने पर रहने पर भी मिलने की इच्छा प्रचुर परिमाण में हो और दोनों पास पास में सटे हुए दोनों के अंग मिल रहे हो, बताओ, और सखियां प्रयास भी कर रही, उसमें उनके तरफ ही कुछ भाव से भंगी से भरे थे, वो करें नहीं, मिलने की इच्छा भी। अच्छा एक बार और अंतर, एक बार साधा ले खाई गो, एक बार साथी ले खाई गो, लड़के को किसी प्रकार से हो गया, कोई किसी तरह से मान के या कुछ क्रोध हो गया, वो खा नहीं रहा, तो मनाते मनाते सब लोग हार गए। तो जब नहीं खाया तो उन्होंने कहा जा मत खाओ, बस चली गई, जा करके सुन गई मैया और पिताजी। अच्छा मैया यदि एक बार आ जाए,
ऑक्सलेट में लिख रहा है, एक बार ताकि नहीं खाई ऑक्सलेट।
तो यही उसमें हो रही है। तो वो कितना बजा?
5:40
तो अब तो हो गया,
नहीं
देरी है,
देरी है इसका तो हो।
तो कहते हैं कि कृष्ण ऐसे चीज को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, यहाँ पर इतनी सब चीजें हैं साधन करने के लिए, कहीं जा सकते हैं, इसलिए कृष्ण वियोग में भी नहीं जाएंगे और साक्षात्कार में तो जाते नहीं, इसलिए गोपी कृष्ण का कभी भी वियोग नहीं होता है। इसलिए योग में वियोग और वियोग में योग उनका होता है, अर्थात और दर्शन में भी साक्षात्कार उनका होता रहता है। लोग कहते हैं कि ये स्फूर्ति है या काय व्यू के द्वारा देते, ऐसी बात मत समझो गोपियों के लिए, कृष्ण ब्रज में साक्षात स्वयं रूप में ही, स्वयं रूप के बिना वहां पर कौन जा सकता है, कृष्ण का कोई तदेकात्म रूप जाएगा ना, कौन जाएगा, इसलिए स्वयं रूप में ही जाते हैं। इसलिए पहले के श्लोक में बतलाया कजे कैसे देखो, वो बतला रहे हैं जा दो होने वहने, कौन
बंदर,
बंदर यहाँ कैसे आए,
ऊपर
बंदरों की नजर बंदरों पर चली जाती है। उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं दो हने व हने। देखो जब तक भक्ति अपूर्ण रहती है तब तक हम लोग ये सोचते हैं कि ये भक्ति के अनुकूल है और ये भक्ति के प्रतिकूल है, बद्धावस्था में ना। भक्ति जितनी ही बढ़ती चली जाएगी प्रतिकूल भी अनुकूल होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब भक्ति संपूर्ण रूप से अनुकूल हो जाती है प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है, इसी का नाम भावावस्था है। ये उस समय हो जाता है, उस समय प्रतिकूल नाम की कोई चीज रहती नहीं। अभी हम लोग साधन में है निम्न स्तर में, इसलिए अभी अनुकूल सब कुछ नहीं, सब कुछ प्रतिकूल जैसा है, इसलिए हम लोगों का मन चंचल हो जाता है। अनुकूल है ठीक, वैसे ही हरि कथा है, हम लोगों का के ऊपर में शासन जो करते हैं बड़े प्रेम के साथ में शासन करने वाले, उनका शासन भी अभी अनुकूल है, किंतु दिखता क्या है, हरि कथा है अनुकूल, तीन बार हो रही चार बार, किंतु हम लोगों के लिए प्रतिकूल लग जाता है। अभी किसी से कोई प्रश्न इसमें से कर दूं वो लोगों के लिए है तो अनुकूल, किंतु कहिए देखो तो ये भरी सभा में हमको अपमान हो, अपमानित होना पड़ा, अब इस कथा में नहीं बैठना ठीक है, हो गया। इसलिए प्रतिकूल तो प्रतिकूल है ही है, अनुकूल भी प्रतिकूल इस अवस्था में होने की संभावना रहती है। इसलिए उत्तम भक्तों का संग हम लोगों के लिए अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो जाता है, क्यों, इसीलिए हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते, हम अपने रूप में अपने अधिकार के अनुसार में उनके पैरों को बांधकर, उनके भावों को बांधकर अपना जैसा ही हम देखना चाहते हैं। यही पर विवाद, अनुकूल और प्रतिकूल का सब लफड़ा यही पर है। जितने दिन भजन साधन में हम जितने अग्रसर होते चले जाएंगे, यह अनुकूल और प्रतिकूल का भाव उतना ही कम होता जाएगा। और एक समय नारद जी की अवस्था में या मुक्त महापुरुषों की अवस्था में पहुंचने पर, या अंततः भाव का आविर्भाव होने पर, अंततः यह दोनों चीजें एक हो जाएंगी। उस समय अनुकूल प्रतिकूल बस ये साधन अवस्था तक, मुक्त अवस्था में सभी कुछ, यहाँ तक कि जो प्रतिकूल है, जैसे एक आदमी किसी एक व्यक्ति को, एक महिला को या लड़की को प्रेम कर रहा है, उसको ये भावना होगी है हमारा कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम, हमारा प्रेम तो कृष्ण में हो नहीं रहा है, उसके लिए अनुकूल बना लेगा साधारण सी बात। उस समय में कोई भी कार्य वो करेगा ना, सब वो भक्ति के अनुकूल हो जाएगा। अभी कोई कहेगा ए बर्तन मांज दो, तो हम कहेंगे जी ये भक्ति का प्रतिकूल है, दिन रात बासन मजना अस्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा करेंगे। हम ऐसे छोटे घर के लड़के नहीं थे जो हम ऐसा करें। किसी को अर्चन में लगा दिया, दो दिन किया, इसके बाद में दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद में रोज जो सवेरे उठना पड़ा, और सवेरे ठंड में, और वही घुमाना रोज, वही एक ही तरह का घुमाना, उसमें कोई कला है न क्या है, वो रोज वही घुमाना, वो चमर दिखलाना, बोलो तो इसमें कोई भाव है ना क्या है भाई, महाराज जी हमको अब कोई दूसरी सेवा दे दीजिए। सब ऐसे ही होता है, अभी अनुकूल में ही प्रतिकूल हम देखते हैं। किंतु जब वैसा जब हो जाएगा ना, दोहने वहनने मथलो पले प्रेम खैंग खनार भवदितो, सब कार्य में उनका भगवत दर्शन होगा। कैसे? कीर्तन के माध्यम से, इसलिए कीर्तन श्रेष्ठ है। दूह रही है गैया, दूह रही है, और कीर्तन क्या चल रहा है, गोविंद दामो धर्मा भवेति विक्रेतु कामा हिलगो पकन्ना मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद वोचत गोविंद दामो धर्मा भवेति विक्रेतु कामा अखिल गोपकं तभी तो बेचने के लिए, तभी बेचने की कामना से वो चल रही है। भाई ये अर्थ मत लगाओ, अरे भाई लिखा हुआ है ये विक्रेतु कामा, बिक्री काम करने के लिए चल रही है, नहीं ये अर्थ नहीं है, इसके अर्थ में जरा भीतर जाओ, क्या अर्थ हो सकता है। काम को बेचने के लिए जा रही है ना, वो कल एक कोई पढ़ा था ना, आपन जौवन न जाचा है,
कुलवती जौवन न जाचा अपन जौवन न जाचा।
अच्छा, वो उसमें पढ़ रहा था,
वैष्णव
पदावली में पढ़ रहा था, के बात सुनाई दो कृष्ण ने, अरे कान के अंदर से जा करके चित्त को अकृत व्यकृत कर दिया। और जो उस नगर में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जिनका चित्त वृत्ति सब प्रेममय हो चुका है, वो उसमें उसके अंग के स्पर्श से ना जाने क्या होगा, वो कैसे गोकुल नगर में रह सकता। वो कहते हैं चंडीदास कुछ मुस्कुरा करके कह रहे, मैं समझ गया, तुम लोगों ने उनको देखा और तुम्हारे ऊपर में उनका रंग चढ़ गया श्याम का। ये ऐसी स्थिति है कि वो गोपियां अपना जौवन जचा रही है, माने क्या, ये चीज है ऐसा जिसको आदमी सबसे अधिक लज्जा की पेटारी में बंद करके ये रखता है, किसी को गंध और हवा न लग जाए। और वो समूह कहती हैं अपने चरण कमलों को, ऐसा कोई कहता है, ऐसे ये कहते क्यों, ऐसा उनके प्रति ऐसा प्रेम हो जाता है, अब वो फिर रह नहीं सकती, वो लज्जा हो चाहे जो हो, वो हृदय से निकाल देती हैं। तो यहाँ कहते हैं जैसे उस समय में वो कीर्तन के माध्यम से कीर्तन ही उस भाव को उनके अंदर में ये सब कुछ ला देता है, और लाते हुए वो सब समय प्रत्यक्षवत वो देखने लगती है। उस समय उनका कोई भी काम दोहना, दोहना माने गायों को, तो वो बतला बिक्रे तू कामाखिल गुप्त, काम बिक्री करने के लिए, दधि नहीं, दधि तो बहाना मात्र है, कृष्ण का दर्शन करके और अपने काम को किस लिए, किस प्रकार से बेचेंगे, कृष्ण से खरीद करने वाले कौन है, इसलिए इस प्रेम को बेचने के लिए। ऐसा मत समझना जो गोपियां इतनी दरिद्र थीं, घर में कुछ खाने को नहीं था, न अन्न है, न दाना है, न चावल है, न वैभव, और दही को बेचने के लिए जा रहे, दही लो दही लो। यदि यही बात होती तो वो कृष्ण लो गोविंद दामो धर्माधोवे किलो, ये क्यों बिक्रे तु काम अखिल गोप कन्या, अखिल गोप कन्याएं, इसमें राधा जी इत्यादि सभी हैं, वे सब काम की बिक्री दधि के रूप में करने के लिए, दधि पर मटकी ले लिया, कृष्ण कृष्ण दामोदर गोविंद लो, बस एकदम तन्मय हो गया। तो ये दोहने के समय में भी बस कृष्ण की स्मृति आ जाती है, और उस समय में वही गान कर रही, गोविंद दामोदर माधवेती, अवहन ने कूट रही हैं मूसल से, ढेंकी में कूट रही, और दो चार स्त्रियां वहां पर दोनों युग्म रूप में कूटती हैं, धम 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 धम, अब तो ये सब है नहीं, दोनों कूट रही, या एक चला रही है और दो उस पैर से उसे ढेंकी को चला रही, दो तीन बहुत वजन का होता है, और एक साथ में तीनों चारों पांचों गोविंद दामोदर माधव। पररात्र भागो उत्थाय गोप्या, पररात्र भागो उत्थाय गोप्यो पररात्र भागे स्मित्वा जसोदा सुत बालकेलिन गायन्ति प्रोच्चैर् दधिमन्थयन्तो गोविंद दामो धर्माधवेति। सवेरे रात में उठ गई और उठ करके दधि मंथन कर रही, अश्रु स्वर से दधि मंथन करते हुए आंखें बंद हैं, अभी भोर के गोविंद दामो धर्माधवेति एकदम तन्मय हो, उस समय में दधि मंथन कर रही है, कोई कोई कर रही है, कूट रही हैं मथनोपलेप, कोई दधि को मंथन कर रही हैं, कोई दधि को दूध को आग पर रख करके उसमें संजाम दे रही हैं, संजाम माने
जामुन देना है,
जामुन दे रही हैं, उसमें भी कोई झाड़ू दे रही हैं, कोई बुहार रही हैं, कोई लेप रही हैं, कोई बच्चा रो रहा है तो डोले में उसको रख करके और धीरे 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 हिला रही, कोई थपकी दे करके बच्चे को सिला रही, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे स्वर से मधुर से और धीरे धीरे करें थप थप दे बच्चा सो, सब कामों में रुदी, तो बच्चा रो रहा है उसको भी उखन वो घर को लिप पोत रही है, कोई चित्र अंकन कर रही है, वो अपने घरों को सजाती थी कैसे चित्र, किसका चित्र, ओखल पहले बनाया, उसके पास ही में ऐसे घुटरुओं पर चलने वाले कृष्ण को बनाया और उसी को
बंधा हुआ,
बड़ी चित्रकारी कर रहे हैं वो, चित्रा बड़ी तेज है, इस तरह से सब गोपियां और वही कीर्तन कर रही हैं तन्मय होकर के, प्रत्येक काम इनका कोई अनुकूल और प्रति सभी अनुकूल हो रहा है, और कृष्ण को वो देख रहे हैं। मार्जन आदो इस प्रकार से गृह के कार्य, अरे फूलों का माला गुपना में तो उनका होगा ही, घर में फूल की मालाएं ले रही हैं फूल और उस ग्रंथन कर रही हैं, और गोविंद दाम एक स्वर से बड़े महीन राग से, इन्होंने भाव नेत्र से देखा, रास की चर्चा इन्होंने सुनी थी, उन्होंने सुना तो सुन करके उसमें भावना करी। कृष्ण ने एक राग एक कोई गान गाया, ये है राग। उस राग का भी कीर्तन का दिया है। उन्होंने उपमा ली चंद्र की, चंद्र की किरणें वो पुष्प को पद्म कमल के फूल को खिला देती है अपनी किरणों से। अब कृष्ण इसको गाने, कितनी सुंदर चांदी छिटक रही है ना? तो उसमें एक कृष्ण शब्द का उसमें और बढ़ा करके और उनसे सप्तम वो पंचम में गा रहे हैं सप्तम में करके, जैसे हम लोग गाते हैं ना कोई कीर्तन करते गोविंद गोविंद और वो कहता है
राधे राधे
राधे राधे, तो वो क्या कहते हैं गोविंद गोविंद, और वो जब कहता है गोविंद गोविंद
राधे राधे।
ऐसे कृष्ण चंद्र पर कीर्तन कर रहे हैं, अर्थात चंद्र की किरणें कितनी सुहावनी और सुशीतल है, तो उसमें वो लगाती कृष्ण, और कृष्ण कह करके दो चार बार कर करके ऐसे स्वर से करती हैं मानो कृष्ण ही वो चंद्र हैं और हम कुमुदनिया हैं और हम आपको दे करके कृष्ण, बस कृष्ण एकदम भाव में तन्मय हो जाती है। ये देख रही हैं ये भाव नेत्र से। इसी प्रकार से और सब लीलाओं को देखते हुए और अपने में ये भावना कर रही हैं। गायंती चैनम, अच्छा देखो गायंती चैनम अनुरक्त धियो अश्रुकंठा, अच्छा गा तो रही है कैसे अनुरक्त होकर, तुमने कैसे समझा जाए अनुरक्त? अरे आंखों से आंसू देखते नहीं हो और गला कैसा रुद्ध हो रहा है तुम देखते नहीं हो, ये तो उसी के लक्षण है। धन्या ब्रज स्त्री, ओ ब्रज की स्त्रियां ही उरुक्रम चित्त जाना, उनका चित्त उरुक्रम से कृष्ण की तरफ में प्रवाहित हो रहा। उरु माने गुरु, गुरु माने तीव्र तेज धारा में, तेज धारा के क्रम से कृष्ण में अनवद्य रूप में प्रवाहित हो रहा है। एक जैसे कि तैल धारावत अविच्छिन्न गति होती है और बड़ी प्रबल धारा में होती है, धीरे धीरे धारा नहीं प्रबल धारा, उसको कहते हैं उरु क्रम। और एक होता है उरुक्रम, उरुक्रम जिसका ऐसा क्रम है प्रभाव है उरु, उनका नाम है कृष्ण का नाम। ये दोनों यहाँ पर पहले कह रहे हैं उरुक्रम से ब्रज की स्त्रियों वो धन्य हैं जो इतनी तीव्र गति से प्रबल गति से कृष्ण में उनके चित्त प्रभावित होता है और कृष्ण भी साक्षात वहां पर आ रहे हैं। अब चित्त जाना इत्यादि के संबंध में हम लोग कल व्याख्या करेंगे, आज यही तक करें। पंचा कल्प दुर्भस्य कृपा सिंधु पतितानां पावने ऐसा ही कीर्तन धरो, सब लोग कोई भी जाओ मत कीर्तन करके जाओ।
सुमाल बेजंती गले में विराजे नटकी सम बीस बजे बसुरी अभिरामृत घोर उड़े लड़ावे यस गावत गोप धरे पद कंज चराय के गाय इते हरियावे ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे ब्रज मंडल माहे बसाए रहूं रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं जग जाल से नाथ बचाए रहो ने तो प्यारे की झांकी निहारा करूं छवि छाक से नाथ छकाए रहो मेरे विनोद बिहारी यही विनती मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। चलो मा